بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج 15 نومبر 2018 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب 194 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org www.brfpakistan.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. نام کتاب دانش اقبال کے چند پہلو. مصنف طالب حسین سیال. این بی ایف طبع اول 2006. تعداد اشاعت 1000. کوڈ نمبر جی این یو 284. قیمت 115 روپے. مطبعہ روحانی آرٹ پریس اسلام. ناشر نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. آئی ایس بی این 969-37-0221- نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. راولپنڈی لاہور ملتان فیصل آباد واہکینٹ بہاولپور کراچی حیدرآباد سکھر نواب شاہ لارکانہ جامشورو جیکب آباد پشاور ایبٹ آباد کوہاٹ ڈی آئی خان بنو کوئٹہ. فہرست پیش لفظ نمبر 1 پیش لفظ نمبر 2 فکر اقبال میں شخصیت کا تصور نمبر 3 اقبال کا تصور خیر و شر نمبر 4 قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو نمبر 5 اقبال کا تصور عمل اور دعا نمبر 6 علامہ اقبال کا تصور جہد مسلسل نمبر 7 خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ نمبر 8 علامہ اقبال کی نظر میں مقام ابدیت نمبر 9 علامہ اقبال کا مرد کامل نمبر 10 اقبال کی نظر میں تصور کی نئی تشکیل نمبر 11 اقبال کی صوفیانہ واردات. پیش لفظ فکر اقبال کی کئی جہتیں اور کئی گوشے ہیں. اقبالیات پر تحقیق کرنے والوں اور ان کے کلام کے شارحین نے اپنے اپنے فہم اور انداز کے مطابق ان کے پیغام کو پھیلایا ہے. اقبالیات پر جس قدر لٹریچر اب تک شائع ہو چکا ہے، 20ویں صدی کا کوئی مفکر شاعر اور ادیب اس سلسلے میں ان کا مثیل نہیں ہو سکتا. 21ویں صدی کے آغاز میں افکار اقبال کی اہمیت اور مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا. اقبالیات پر تحقیقی اور تشریحی نوعیت کے علمی سرمایہ کی کمی نہیں ہے، لیکن حالات حاضرہ اور جدید دور کے تقاضوں کی روشنی میں افکار اقبال کا اثر نو جائزہ لے کر جدید مسائل کے لیے ان کی دانش اور بصیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. افکار اقبال کا بنیادی موضوع انسانی شخصیت کی تطہیر و تعمیر اور ایسے عمرانی نظام کی تشکیل ہے جس میں روحانی اور اخلاقی اقدار کو فوقیت حاصل ہو. اقبال کی اس دانش کی وضاحت کے لیے میرے کئی مضامین ذیلی عنوانات کے تحت فکر و نظر، ماہ نو اور دیگر جرائد میں شائع ہوئے. ان مضامین پر نظر ثانی کرتے وقت احساس ہوا کہ ان میں کچھ علمی حقائق نہایت اختصار و اجمال سے بیان کیے گئے ہیں. عام قاری کی تفہیم کے لیے ان حقائق کو کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے ان مضامین میں کئی ترامیم کر کے ان کو دوبارہ تحریر کیا. چونکہ ان مضامین کا موضوع ایک ہی ہے اور ان میں ایک منطقی ارتباط ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کو یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جائے. میں نے اقبال کی منظومات اور ان کے مقالات کا براہ راست مطالعہ کیا ہے، اس لیے میرے سامنے فکر اقبال کے کچھ نئے گوشے واہ ہوئے ہیں اور ان کے کئی تصورات کا مفہوم دور حاضر کے تناظر میں زیادہ واضح اور زوردار انداز میں ابھرا ہے. اقبال کے خیالات کو قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کے افکار کا اصل سر چشمہ یہی ہے. میں نے افکار اقبال کی ترجمانی اور تعبیر کرتے وقت تحقیقی اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے और कोशिश की है कि उनके ख्यालात को बेकमोकाश अपने अंदाज में बयान कर दिया जाए। इन मजामीन को मुरतब करना इकबाल से इजहार अकीदत और उनके मिशन से वाबस्तगी का एक जरिया है। इस सिलसिले में अहले इल्म की राय आरा मेरी रहनुमाई और हौसला अफजाई का बाइस होगी। तालिब हुसैन सियाल, मकान नंबर 12, कैटेगरी 1, सुआ रोड, G10-3, इस्लामाबाद। फिक्रे इकबाल में शख्सियत का तसव्वुर। फिक्रे इकबाल के मुताबिक कायनात के हर जर्रे में एहसास तशख्खुस है। इसके इस नजरिए की बुनियाद कुरान हकीम की ये आयत है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरह तगाबुन, सूरह नंबर 64, आयत नंबर 1। तर्जुमा, जमीन और आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्दीक करता है। हकीकी सल्तनत और हम्द उसी की है और वो हर शय पर कादिर है। कायनात के जर्रे जर्रे में हयात की चिंगारी सुलग रही है। कायनात की हर शय कवानीन फितरत में जकड़ी हुई है। हम कवानीन फितरत की इस जबरियत को तकदीर इलाही भी कह सकते हैं और कायनात का एक अंदाज तस्वीर भी। ये भी मुमकिन है कि कायनात की हर शय अपने अपने अंदाज में खुदा की पाकी बयान कर रही हो और हम उसे सुनने और समझने से कासिर हों। साइंस इस नजरिए की मुखालफत नहीं करती क्योंकि अभी तक ये मामला साइंस की हदूद से मावरा है। कायनात के हर जर्रे में अगर एहसास तशख्खुस है तो उसमें हयात के साथ शऊर भी होगा, चाहे उसका दर्जा कितना ही अदना हो। इकबाल इस कायनात को हयातियाती नुक्ता नजर से देखते हैं। जमादात में जिंदगी की अतना शक्ल है, ये बज़ाहिर साकिन नजर आते हैं लेकिन उनके हर जर्रे में तहर्रुक पाया जाता है। मुस्बत और मनफी बर्फी गर्दिश कर रहे हैं। दूसरे दर्जे की जिंदगी नबातात की है, उनकी नशोनुमा देखी जा सकती है। वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और अपनी इंतहा को पहुँच कर खत्म हो जाते हैं। नबादात जमादात की नस्बत आजाद हैं अगर उनकी जिंदगी का इन्हिसार खाक से पैवस्ता रहने पर है। हयात जमीन की कैद से आजाद हो जाती है जब वो हैवानात की सूरत में जाहिर होती है। तमाम परिंद चरिंद और मवाशी जमीन पर आजादाना हरकत करते हैं। उनमें समा बसर तो है लेकिन वो नतक और फहम नहीं रखते। उनके लिए उनकी हयात की रविश में कोई तरक्की नहीं हुई। उनके तरीक खाए आशियां साजी और तर्ज बुदोबाश इर्तका से खाली हैं। वो सब अपनी जिबिल्लतों के असीर हैं। इसके बरक्स इंसान अपनी जिबिल्लतों के तकाजों से बुलंद भी हो सकता है। वो फहम व फरासत का मालिक है, खैर शर की तमीज रखता है। इंसान को अपने तशख्खुस का तेज पर एहसास है। वो अपने अपनाए जिन से मिलजुल कर एक तमद्दुन की बुनियाद रखता है। इन्हीं खसूसियात की बिना पर इस बार इंसान को एक बरतर शख्सियत करार देते हैं। इंसान आजाद और खुद मुख्तार है। वो अपनी जिंदगी की रविश का खुद फैसला करता है, यहाँ तक कि वो अच्छाई और बुराई का रास्ता चुनने में भी आजाद है। इरशाद रब्बानी है, ला इकराह फि दीन कद तबयना अर-रुश्द मिन अल-गय। आयत सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 256। तर्जुमा, दीन में कोई जबर नहीं, हिदायत गुमराही से वाजे हो चुकी है। इस आयत का असल मफहूम इस सूरत में ज्यादा वाजे होता है अगर हम इसके सियाक व सबाक को मलहूज रखें। इस आयत करीमा से पहले कुरान हकीम की मशहूर आयत अल-कुर्सी है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामला और उसके लामहदूद इक्तदार को बयान किया गया है। सवाल पैदा होता है कि जो खुदा जिंदगी के हर दर्जे और हर सूरत का खालिक है और जिसकी लामहदूदियत हाकमियत आला कायनात के जर्रे जर्रे तक बसी है, क्या वो खुदा इस पर कादिर नहीं कि वो तमाम इंसानों को सच्चाई पर जमा कर दे और अपनी ताकत के जरिए बुराई का खात्मा कर दे। अल्लाह ताला ने मंदरजा बाला आयत में इस राज को बयान किया है कि इसके मंसूबा कायनात की हिकमत का तकाजा है कि वो इंसानों को बजोर हिदायत की तरफ न ले आए बल्कि उसने इंसानों को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो हिदायत का रास्ता इख्तियार करें और चाहे तो अपने लिए बुराई का रास्ता मुंतखब करें। इकबाल इंसान को एक आजाद शख्सियत करार देते हैं जो अपना रास्ता खुद मुतय्यन करती है। इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपनी शख्सियत को ताकतवर बनाए या उसे कमजोर करके मुंतशिर कर दे। अल्लामा इकबाल ने अपनी बयाज में लिखा है कि इंसान असलन एक तवानाई, एक कुवत या कुवतों का एक ऐसा मजमुआ है जिसके अनासिर की तरतीब में इख्तलाफ की गुंजाइश है। इन कुव्वतों की एक मखसूस तरतीब का नाम शख्सियत है। हम अपनी शख्सियत को कुछ इस तरह तकवीत पहुँचाएं कि उसके कवायद तरकीबी को अपने मुकर्रर माहौल के मुताबिक अमल करने में मदद मिले। लिहाजा हमें चाहिए कि फैलियत इन तमाम सूरतों से दस्तबरदार हो जाए जो शख्सियत को तहलील करने पर मायल हों। हर उजूया में दो जिबिलतें मुजमिर हैं, अवलन जिबिलत हयात, सानियन जिबिलत मर्ग। हर उजूया अपनी हयात को बरकरार रखने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें तहफ्फुज हयात के लिए फितरी कुव्वतें पाई जाती हैं। जिबिलत हयात जिनसी और तख्लीकी कुव्वतों के जरिए सरगर्म अमल रहती है और अपनी अनवा को जन्म देती रहती है। इसके बरक्स जिबिलत मर्ग उजूया की कुव्वतों को मुंतशिर करने के दर पर रहती है, अगरचे एक मखसूस उजूया जिबिलत मर्ग की वजह से अपनी तबई मुद्दत पूरी करके मादूम हो जाता है, लेकिन नई सूरतों और नई शक्लों में उसकी जिंदगी जारी रहती है। अशाते जात भी उजूया के अंदर मुखफी होती है। जब खारजी आफात और हवादिस से उजूया को खतरा लाहक होता है तो जिबिलत हयात अपनी कुव्वतों को मुश्तमल करके उजूया की हिफाजत करती है, बल्कि उजूया की कुव्वतें इस मुसाबकत में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जहाँ जिबिलत हयात उजूया की नशोनुमा में मददगार साबित होती है, वहाँ जिबिलत मर्ग उजूया की गैर नामियाती मादे की तरफ मराजियत का सबब बनती है। हर उजूया का तख्लीकी हिस्सा लापानी होता है, जबकि दूसरा हिस्सा उजूया को मनसूख करने की तरफ मैलान रखता है। डार्विन और फ्राइड ने नजरिया उजूया को साइंसी बुनियादों पर पेश किया है। इकबाल अपने नजरिया शख्सियत में उनसे इस्तफादा करते हैं, लेकिन उनकी अपनी मुनफरिद और जुदागाना सोच है जिसकी बुनियाद खालिसतन रूहानी और इलाहियाती है। वो ये नतीजा अख्ज करते हैं कि हयात इंसानी शक्ल में एक अजीम हस्ती की सूरत में जलवागर होती है, जहाँ शऊर अपने बुलंद तरीन मरतबे पर सरगर्म अमल होता है। इंसान का ये फरीजा है कि वो अपने शऊर को उजागर करे और आला शख्सियत के मनसब पर फायज हो। वहदत शऊर के इस रोशन नुक्ते को इकबाल लफ्ज खुदी से ताबीर करते हैं। उनका ख्याल है कि इंसान खुद फ्यूल असल है। जब वो अपनी जात को पहचान ले, उसे अपनी कुव्वतों का इदराक हासिल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसने आला शख्सियत हासिल कर ली है। अल्लामा इकबाल इंसान को निजाम कायनात में एक फ़ाल और मुस्तकिल उंसर की हैसियत से देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इंसान ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो। एक तरफ वो फितरत पर गलबा हासिल करे और दूसरी तरफ जब्त नफ्स के जरिए वो इन कुव्वतों को शिकस्त दे जो इंसान की रूहानी तरक्की और इखलाकी बालिदगी के रास्ते में मज़ाहिम हैं। वो इंसान को सिफर अंदाज होने की तालीम नहीं देते। वो कहते हैं कि इंसान को अपना मकाम बनाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है और कश्मकश हयात के मरहलों से गुजरना पड़ता है। इसलिए इकबाल इन नजरियात हयात के मुखालिफ हैं जिनमें फना की तालीम दी गई है। वो हिंदू मत के फलसफे और तसव्वुफ़ शुक्र के मुखालिफ थे कि उनमें इंसान फेलियत से दस्तबरदार हो जाता है और सुकून व सुरूर की तलाश में अपनी शख्सियत को मिटा देता है। इकबाल की तालीमात में खारिज से शिकस्त खाकर बातिन की तरफ रुजू करना राह निजात नहीं है, बल्कि इंसान खारजी जिंदगी में जिद्दोजहद करके फितरत को मुसफ़र करके एक ताकतवर तमद्दुन की बुनियाद रखे और इस तमद्दुन की रूहानी और इखलाकी असास की मजबूती के लिए अपनी बातिनी कुव्वतों को तालीम तरबियत के जरिए उजागर करे। फितरत के कवानीन दरियाफ्त करके ताकत और एतमाद हासिल किया जा सकता है। ये ताकत भी दरअसल उसी कादर मुतलक हस्ती की मरहून मिन्नत है जिसने कायनात में ये कवानीन पैदा किए। दूसरी तरफ इंसान अपने खुदी को बेदार करके लामुतनाही खुदी की कुव्वत को अपने अंदर जज्ब करके अपनी शख्सियत को कामिल मुतसर्रिफ और लाफानी बना सकता है। हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज वाले जिब्रील। अल्लामा इकबाल ने 4 नवंबर 1931 की शाम इंग्लिस्तान में इंडिया सोसाइटी की दावत पर तकरीर करते हुए कहा, मैं एक इंसान के शानदार और दरख्शां मुस्तकबिल पर पुख्ता यकीन रखता हूँ और मेरा अकीदा है कि इंसान निजाम कायनात में एक मुस्तकिल उंसर की हैसियत हासिल करने की सलाहियतों से बहरावर है। ये अकीदा मेरे ख्यालात और अफकार में आपको अमूमन जारी और सारी नजर आएगा। इकबाल का ईकान है कि इंसानी शख्सियत इश्क और जब्त नफ्स के बगैर मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकती। उनके नजदीक इश्क एक वसी इस तरह है जो कायनात के जर्रों के जज्बों इंजज़ाब से लेकर खुदाए लम यज़ल की मोहब्बत तक वसी है। इकबाल ने इश्क की इस्तलाह रहबानी और मादी रवैयों की नफी में भी इस्तेमाल की है। इश्क के जज्बे से मुजबित और वजदानी रवैये तश्कील पाते हैं। इश्क की बदौलत अपनी धारा मुसफ़ा व मुजल्ला होकर वजदानी धारी की शख्सियत इख्तियार कर लेता है, जो अना की अमीर व वसी कायनात का खोज लगाता है। इकबाल के तसव्वुर इश्क में सूफियाना मफहूम भी है और आर्ट की तख्लीक करने वाली वालिहाना लगन का बयान भी है। इसके साथ साथ वो इश्क की इस्तलाह को इमरानी गायात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सूफिया इस्लाम ने इश्क को इश्क के हकीकी के मफहूम में इस्तेमाल किया है। सूफी इश्क इलाही और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासिवा कुछ नहीं जानता। उसकी इबादत, उसकी रियाजतों, सब्र सिबात और उसकी खिदमत खल्क के कारनामों का हतमी मकसूद हुब इलाही और रजाए इलाही होता है। वो ना हूर व कसूर का तलबगार होता है और ना ही ऐश जन्नत का के तरफ का दिलदादा। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी चाहता है और जलवाहाय खुदाबंदी के मुशाहिदे में सरशार रहता है। और अगर हकीकी तसव्वुफ के लिटरेचर का बनजर गायब मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि सूफी को हर दम अपनी शख्सियत की तथहीर की फिक्र दामनगीर रहती है। वो जिक्र फिक्र और तर्क लज्जात के अमाल से अपनी खुदी को मजबूत करना चाहता है। वो किसी मंजिल पर रुकता नहीं। उसके सलूक के अंदाज में एक तसलसल कार फरमा होता है। एक लम्हे की गफलत भी उसकी रूहानी तरक्की के लिए नाकाबले बर्दाश्त होती है। उसकी तमाम तर तवज्जो अपनी बातनी दुनिया की तामीर पर लगी होती है, ताकि वो अपनी हस्ती को इस कदर मजबूत और तवाना कर ले कि वो खुदा के जलवों का सामना कर सके। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि सूफी खारजी मनफात और शहरी शहरत हत्ता के गुलशन जन्नत से भी बेनियाज हो जाता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाए और ये कुर्ब कायम दायम रहे। इस दोस्ती को निभाने के लिए वो अल्लाह की नाराजगी से भी खायफ रहता है और उसकी रहमत और इनायात का उम्मीदवार भी रहता है। वो न सिर्फ दोज़ख से डरता है और न जन्नत के लिए ललचाता है, बल्कि उसका अवलीन और आखरीन मकसद अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो खुदा के रूबरू हो सके और उसकी विलायत का अपने आप को अहल साबित कर सके। तसव्वुफ का ये नजरिया दरअसल शख्सियत साजी या तामीर शख्सियत का नजरिया है, जिसमें बुनियादी किरदार जज्बा इश्क अदा करता है। इकबाल भी सूफी की तरह वालिहाना इबादत के कायल थे, जिसमें कोई गर्ज पोशीदा ना हो। वो अपने मन में डूब कर कुरान हकीम की तिलावत किया करते थे। मीर गुलाम भीख नेरक मरहूम बयान करते हैं, एक मरतबा मैं लाहौर गया। ट्रेन ऐसे वक्त लाहौर पहुंची कि इकबाल के मकान पर पहुंचने के बाद सुबह की नमाज का वक्त बाकी था। मैं ऊपर पहुंचा तो एक कमरे से तिलावत कलामुल्लाह की बुलंद मगर नहायत चीनी और दर्द अंगेज आवाज मेरे कानों में आई। मैं समझ गया कि यह आवाज किसकी है। मैंने फौरन जल्दी जल्दी वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए उस कमरे में गया। देखा कि इकबाल मुसल्ले पर बैठे कुरान हकीम पढ़ रहे हैं। मुझको देखकर उन्होंने मुसल्ला खाली कर दिया और खुद पास के कमरे में चले गए। मैंने उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ी तो नमाज में खास कैफियत महसूस की और मैंने अपने दिल में उस वक्त ये कहा कि ये कैफियत वो शख्स यहाँ छोड़कर गया है जो अभी अभी यहाँ बैठा हुआ कलामुल्लाह पढ़ रहा था। ये बात मेरे इल्म में थी कि इकबाल सुबह की नमाज बहुत सवेरे पढ़कर तिलावत किया करते थे, मगर नमूना उस रोज देखा। उस रोज से मैं इकबाल की रूहानियत का कायल हो गया और दूसरों से ये कहने लगा कि इकबाल बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। इकबाल की सोच सिर्फ सूफी के जज्बा इश्क तक महदूद नहीं थी। वो फनकार की वालेहाना लगन को भी इश्क से ताबीर करते हैं, जो अजीम और लाफानी शहपारों की तख्लीक करती है। शायर हो या मुगनी, मुसव्विर हो या अदीब, अगर वो सब अपने जज्बों में साबित हैं तो उनका फन में दर्जा इश्क तक मुस्तगरक होना उनकी तख्लीकात को अहले दुनिया के लिए बायस रहमत और बायस फरोग जिंदगी बना देता है। इकबाल का कमाल यह है कि उन्होंने इश्क की सलाह को इमरानी तनाजुर में इस्तेमाल करके उसे एक वसी और जामे मफहूम अता कर दिया है। हर वो शख्स जिसको अपने फन पेशे और मनसब से लगाव है और वो बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए कोशां रहता है, तो उसकी ये तमाम जिद्दोजहद और तगो दो रूह इश्क से आरास्ता होने की वजह से सिबाते दवाम रखती है। इसके बरक्स तमाम शहरी और अदबी तख्लीकात और तमाम फन पारे जिनमें खून जिगर की आमेजिश न हो, वो बजाते खुद मुर्दा हैं और बनी नौ इंसान की बेदारी और उनकी सैराबी का कोई सामान उनमें पोशीदा नहीं होता। तिब को इश्क से महरूम इंसान की शख्सियत खोखली होती है, चाहे वो मनसब इरशाद पर फाइज हो या वो किसी आला पेशे और जय्यद फन से वाबस्ता हो। मजबूत शख्सियत उसके हिस्से में आती है जो अपने काम में जान लड़ाता है, अपनी जात की तकमील की मंजिल पर वही पहुंचता है जो फितरत का हम मशरब और रोशन जमीर हो, जो नेजे की नोक और तख्ते दार पर भी सच बोलता हो। अल्लामा इकबाल ने इश्क को राज हयात और सबब तख्लीक कायनात करार देकर इसके हजारों मकामात बताए हैं। वो मकामात उनकी शायरी में इस तरह ढलते हैं। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोख, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, कुंदो सुबुक सैर है गरचा जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम। इश्क को तकवीम में असरे रमा के सिवा और जमाने भी है जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क की मस्ती से है पै करे गुल ताबनाक, इश्क है सहबा खाम, इश्क है कासुल कराम, इश्क फिकहिया हरम, इश्क अमीरे जुनूद, इश्क है इब्नु सबील, इसके हजारों मकाम। इश्क के मिजराब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। बाले जिब्रील। अल्लामा इकबाल ने शख्सियत की तस्हीर और तामीर के लिए जज्बा इश्क को कई तरीकों से काम में लाया है। इश्क न सिर्फ अमल के लिए उभारता है बल्कि वो हर किस्म के खतरात से भी बेनियाज कर देता है। इश्क जुर्रत आमोज भी है और जोरावर भी। तरीकत इश्क में अय्यारी और मसलहत हराम है और वो हर किस्म के हिस्सों आग से पाक है। इसीलिए इकबाल के कलाम में बार बार ये कहा गया है कि बड़े बड़े मार्के और बड़े बड़े कारनामे इश्क की बदौलत सर अंजाम पाए। अगर इश्क न हो तो शरीयत के अहकाम की बजावरी रियाकारी है और सूमो सलात महज रुसूम रह जाती है। इकबाल कहते हैं, अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वलीन है इश्क, इश्क न हो तो शराए दीन बुत कदाए तसव्वुरात, सिदके खलील भी है इश्क, सबरे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अलगर्ज इकबाल का तसव्वुर इश्क जिंदगी और अमल से इबारत है। उमंगों से खाली जिंदगी और जमाल फितरत से बेहिसी शख्सियत को अफसरदा और कमजोर कर देती है। इसके बरक्स फिक्र जिक्र और जिद्दोजहद हयात से इंसानी शख्सियत मुस्तहकम होती है। इकबाल के तसव्वुर इश्क से इंसानी शख्सियत तवानाई और तख्लीकी फैलियत के औसाफ से मुतसिफ होकर खुदबीनी, खुद नगरी और जहाँबानी की अहल हो जाती है। आशिक आनीस्त के लब गर्म फुगाने दारद, आशिक आ अस्त के बरकफ दो जहाने दारद। वतो तवानाई से तख्लीकी काम लेने के लिए तंजीम ज़ात और नज़्म इज्तिमा भी जरूरी है। इसलिए इकबाल तरबियत शख्सियत के लिए ज़ब्त नफ्स पर जोर देते हैं। नफ्स अगर बेलगाम हो जाए तो शख्सियत बिखर जाती है। दाखिली सतह पर तरगीबात नफ्स को माकूलियत की राह पर डालने और इखलाक इकदार पर कारबंद रहने से शख्सियत में तवाजुन और इस्तेहकाम पैदा होता है। नतीजतन इज्तमाई सतह पर कुव्वत बर्दाश्त और अदल इंसाफ के रवैये परवरिश पाते हैं, जिनसे तहजीबी और तमदनी जिंदगी की बुनियादें सवार होती हैं। तवाना और मुस्तहकम शख्सियत की तामीर और जानदार तमदन का क्याम जब्त नफ्स के बगैर नामुमकिन है। अहले कुव्वते शोज वरद या कवी, ता सवार उस तरह खाकी शुई। इसरार खुदी। जब्त नफ्स वसी इस्तलाह है, तहम्मुल व बुर्दबारी, सब्र व सुबात और नज्म व रवादारी उसकी शाखें हैं। इश्क के मकासिद भी उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकते जब तक आशिक एक खास डिसिप्लिन और अदब का पाबंद न हो। इश्क में कई सब्र आजमा मरहले और कई इम्तहानात आते हैं जिनमें सबात और इस्तक़लाल के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। इश्क में बिलाशुबा आरजुओं और तमन्नाओं का तमव्वुज होता है, लेकिन जब तक उन आरजुओं और उमंगों की तंजीम न की जाए, उनको राह रास्त पर न लगाया जाए, उस वक्त तक मतलूब मकासद हासिल नहीं होते। जब्त नफ्स से इंसान की शख्सियत में ठहराव आता है, वो नाकामियों से मायूस नहीं होता और अख्तियार की मजाहमतों का शाइस्ता तरीक से मर्दानावार मुकाबला करता है। इश्क और जब्त नफ्स में बज़ाहिर तज़ाद नजर आता है, क्योंकि इश्क में जोर, वलवला और जोशो फरोश है, जबकि जब्त नफ्स तहम्मुल, बुर्दबारी, रवादारी और अफ़हामो तफ़हीम से इबारत है। लेकिन ये तज़ाद सतही नौयत का है। इश्क का मुतजाद जब्त नफ्स नहीं बल्कि बेहिसी और अय्यारी है। बेहिस शख्स न तो फितरत के हुस्न जमाल से मुतासिर होता है और ना ही उसके दिल में किसी इंसान के दुख और दर्द से जज्बा तरहम पैदा होता है। वो मोहब्बत और राफ्त और जिंदगी के तपाक से महरूम होता है। ऐसा बेहिस शख्स अपने फराइज मनसबी भी लगन और खुलूस से सर अंजाम नहीं देता। वो बुझा बुझा रहता है और हर वक्त अपनी अक्ल अय्यार से बगैर मेहनत के फवायद हासिल करने के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए वजह तौर पर कहा जा सकता है, इश्क और जब्त नफ्स एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। जब्त नफ्स के बगैर इश्क नतीजा खेज नहीं हो सकता और इश्क की उमंग के बगैर जब्त नफ्स का तसव्वुर ही बेमानी है। वही शख्स सुरखरू हो सकता है जो इश्क के जज्बा फरमा के साथ साथ जब्त नफ्स के रुमूज से भी आशना हो। आशिक वो नहीं होता जो फरियाद कुना हो, बल्कि आशिक वो है जो अपने अज्म और कोहकनी से अपना हदफ हासिल कर ले। बाल की नजर में इनफरादी शख्सियत और कौमी तशख्स दोनों अहम है। नज्म व ज़ब्त दोनों का पासबान है। वो ज़ब्त नफ्स से इंसानी तनाजुर में बेखुदी और इस्तेहकाम मिल्लत का तसव्वुर उजागर करते हैं। ज़ब्त नफ्स जो रवादारी और तहम्मुल से इबारत है, मुहज़्ज़िब सोसाइटी की पहचान है। इस माशरे में रवादारी और तहम्मुल हो तो तमाम मसाइल अफहाम और तफहीम से हल किए जाते हैं। ऐसे माशरे में कच बहसी, बाहमी सरखुट अव्वल और तशद्दुद के रवैये काबिले मजम्मत समझे जाते हैं। इज्तमाई और सियासी मसाइल के हल के लिए बहस और तमहीज मारूजी नौयत की होती है। बहस बुनियादी मसाइल और अहम मामलात पर मुर्तकिज रहती है। मुबाहिसों और तनकीदों में शख्सियात को हदफ नहीं बनाया जाता बल्कि हर वक्त हकायक पर नजर रहती है। इसलिए कहा जाता है कि कामयाब जमहूरियत जब्त नफ्स के साथ मशरूत है। झूठ और मकरो फरेब शख्सियत को कमजोर करते हैं। ऐसे कमजोर और कम हौसला अफराद पर मुश्तमिल कौम कभी भी दायरा सू से बाहर नहीं निकल सकती। इकबाल सदाकत और सच्चाई को ही जिंदगी करार देते हैं क्योंकि फितरत कभी झूठ नहीं बोलती। इकबाल फितरी तौर पर झूठ से नफरत करते थे। इस्लाम में झूठ को बुराइयों की जड़ करार दिया गया है और खबरदार किया गया है कि झूठ बोलने वाले अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। अरबी जबान में लफ्ज लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, और अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों को मलून करार दिया है। झूठा शख्स न सिर्फ बुजदिल होता है बल्कि वो माशरे में फितना और फसाद भी फैलाता है। वो अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करता है। झूठ बोलने वाला शख्स कभी कोई जुर्रत का काम नहीं कर सकता। वो इश्क की लज्जत से ना आशना होता है। वो पुरखतर जिंदगी से भागता है। इस किस्म के लोग अपनी कौम और माशरे को पस्ती और जिल्लत की तरफ ले जाते हैं। जिस कौम में झूठ और फरेब का चलन आम हो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। वो कौम अपने इज्तमाई मसाइल को हल नहीं कर सकती और हकायक का सामना नहीं कर सकती। इस कौम में ऐसे अफराद पलते हैं जो कभी अपने आप को मजलूम जाहिर करके, कभी अपनी यतीमी का बहाना बनाकर, कभी हालात के सितम की कहानियां बयान करके और कभी अपने असलाफ की अजमत और कौमी खिदमात का हवाला देकर हमदर्दियां, माली इमदाद और इनामात खुशरवाना हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मेहनत से खाली और इखलाकी जरूरत से आरी होते हैं। सहारे इसलिए ढूंढते हैं कि उनकी शख्सियत कमजोर होती है। इसी तरह कमजोर और कौमी तशख्स से बेगाना कौमें अपने गुर्बत और पसमानदगी के अहवाल को फसाहत और बलागत से बयान करके अगयार के सामने कशकोल फैलाती हैं। इकबाल को इनफरादी और कौमी सतह पर झूठ और मकरो फरेब और दस्त सवाल दराज करने से सख्त नफरत थी। वो इन बुराइयों को तामीर शख्सियत और कौमी तशख्स की राह में बड़ी रुकावटें ख्याल करते हैं। अल्लामा इकबाल को कयाम इंग्लिस्तान के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जो उनके लिए सदमे का बाइस बना, क्योंकि झूठ और मुनाफिकत उनसे बरामद हुई जिनसे उन्हें तवक्का नहीं थी। इकबाल बयान करते हैं, जब मैं इंग्लिस्तान गया तो मैंने डॉक्टर आर्नल्ड साहब से ये ख्वाहिश की कि मेरे कयाम का इंतजाम ऐसे घर में करवाया जाए जहाँ जबीहा का खास इंतजाम हो। यूरोप में सिर्फ यहूदी इस बात का खास तौर पर ख्याल रखते थे कि सिर्फ अपना जबीहा खाएं। चुनाचा एक अच्छे यहूदी के घर मेरी रिहाइश का इंतजाम करवा दिया गया। इन लोगों में बहुत सी खूबियां थी। अपनी नमाज बाकायदा पढ़ते थे। जब मैं घर में होता तो मैं भी शरीक हो जाता था। मैंने उनसे कहा कि मुस्लिम होने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भी पैगम्बर हैं और मैं उनकी रविश पर चल सकता हूँ वगैरह, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरा दिल उन लोगों की तरफ से खट्टा हो गया। मुझे दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हर उस चीज में जिसकी मुझे जरूरत होती थी और जिसको मैं उनके जरिए मंगवाता था, ये लोग दुकानदारों से कमीशन लिया करते थे। उनकी इसी एक आदत ने उनकी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया। पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है।